بسم الله الرحمن الرحیم.
آخرت کو آپ جو ہے عقیدے سے نکال دیں تو دنیا کھیل کود کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا. اس لیے قرآن مجید نے اس کو, اس عقیدے کو بہت زیادہ اہمیت دی, اور اس پر جو بھی اعتراض ہوتے رہے ان اعتراضات کا کئی جگہوں پہ مختلف طریقوں سے جواب بھی دیا ہے. یہاں پہ تین بنیادی اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے اس سورہ میں, سورہ قاف میں. سورہ قاف جو ہے وہ 50 نمبر سورہ ہے جمع کے اعتبار سے, اور ویسے نزول کے اعتبار سے 34 ہے, یعنی مکی سورتوں میں سے ہے, چونکہ 87 سورتیں جو ہے مکے میں نازل ہوئی. تو تین بنیادی اعتراضات ہیں کہ جس کے جواب دیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا جسم ذرا ذرا ہو جاتا ہے. اب اس ذرے ذرے پہ بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا, اب یہ ذرا ذرا کیسے جمع ہوں گے, وہ بھی ایک انسان کے نہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کے, یہ سارے ذرا ذرا کیسے جمع ہوں گے, اور پھر جو ہے کون جانے گا کہ یہ ذرا کس کا ہے, کیونکہ جب مٹی میں مل جاتے ہیں تو ذرے آپس میں تو ایک جیسے ہو جاتے ہیں, تو یہ ذرا کس کا ہے, یہ ذرا کس کا ہے, اس کی کوئی پہچان تو نہیں ہے, اس میں کیسے جمع ہوں گے. پہلا اعتراض یہ ہے کہ انسان جسم ہے, اور جسم جو ہے مرنے کے بعد زمین میں مل جاتا ہے, ذرہ بن جاتا ہے. اب ذرہ دوسرے سے کوئی مختلف نہیں ہے, ایک جیسے ہیں, تو کیسے جمع ہوں گے اس انسان کے ذرات کے, پھر انسان زندگی جو ہے دوسری زندگی انسان حاصل کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ دین اسلام اور قرآن مجید صرف یہ نہیں کہتا کہ انسان زندہ ہوں گے, ہر انسان کو اپنے اعمال ملیں گے, بلکہ ہر انسان کو اس کی جو نیات ہیں, نیتیں ہیں, وہ بھی ملیں گی. تو کروڑوں انسان, کروڑوں انسان نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے اعمال کیے ہوں, کتنی نیتیں کیے ہوں, وہ کیسے جمع ہوں گی. یہ ایک دوسرا جو ہے وہ اعتراض ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے اور اس کو جواب دیا گیا. تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ پھر قرآن مجید ہر جگہ پہ جو اس کا طریقہ ہے کہ انکار کرنے والوں کو یہ بتایا گیا ہے, خبردار کیا گیا ہے کہ جس چیز کا تم انکار کر رہے ہو اس انکار کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا عذاب کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو جیسے کہ ایک طرح کی دھمکی ہے, لیکن یہ دھمکی وہ دھمکی نہیں ہے کہ جو کبھی پوری نہیں ہوتی, بلکہ یہ دھمکی وہ ہے کہ جو ہر حال میں پوری ہونی ہے. اس لیے سورہ قاف کا بنیادی موضوع جو ہے وہ قرآن مجید میں جو بنیادی عقیدہ ہے آخرت کا, اس کے جو اعتراضات تھے اس کے جوابات دینا. اس لیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اس درس میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. چھوٹی سورہ ہے, بڑی سورہ نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. قرآن مجید میں جو مکی سورتیں ہیں وہ چھوٹی سورت ہیں, اور اس میں آیات بھی چھوٹی چھوٹی ہیں. لیکن جو مدنی سورے ہیں, حالانکہ تعداد میں مدنی سورے کم ہیں, لیکن وہ سورے ایک تو خود بھی آیات بھی اس میں بہت سارے ہیں, اور پھر جو ہے آیات لمبی لمبی آئے. تو کہا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قاف والقرآن المجید, قسم ہے اس قرآن مجید کی. قاف حروف مقطعات میں سے ہے, اور حروف مقطعات بہت سے سوروں میں آپ کو ملیں گے, اور کچھ تو حروف مقطعات ہیں جو مثلا چار پانچ حروف ہیں, قاف ہا عین یا صاد. کچھ ہیں جو دو ہیں, الف لام. کچھ تین ہیں, الف لام میم. کچھ چار ہیں, الف لام را. کچھ صرف ایک ہے, جیسے قاف یا صاد सिर्फ एक हर्फ जो है वो मुकत्ता टूटा हुआ है, बाकी किसी से जुड़ा नहीं है। ये हरूफ है मुकत्ता, तो बहुत सारी अपने अंदर असरार भी रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे लिए जो जाहिर इंसान के लिए है उस हवाले से एक रिवायत है, हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वसलाम से, ये हरूफ मुकत्तात भी एक तरह से चैलेंज है। जिस तरह से कुरान मजीद ने कहा है कि अगर तुम्हें शक है कि ये कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नहीं है तो ऐसा बना के लाओ, फिर कहा कि इस जैसी 10 सूरे बना के लाओ, एक सूरा बना के लाओ, चैलेंज है। ये भी एक तरह से चैलेंज है, कहा जा रहा है कि ये जो आगे सूरा है ये सूरा उन्हीं हुरूफ से बनी है जो आप भी इस्तेमाल करते हैं, अलिफ लाम मीम काफ साद, सारे वो सूरे हैं हरूफ हैं जो आप भी इस्तेमाल करते हैं, ये सूरा भी उन्हें हरूफ से बना है। नए हरूफ तो नहीं लाया कुरान मजीद, नई कोई जबान तो नहीं लाया कुरान मजीद, वही जबान है वही हरूफ हैं जो आप भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये खुदा की तरफ से नहीं है तो इन्हीं हरूफ को इस्तेमाल करते हुए आप भी एक सूरा बना के लाएं, तो ये भी एक हरूफ मुकत्तात एक तरह से चैलेंज है। तो ये एक तरह का चैलेंज है कि फिर कहा जा रहा है कि वल वल कुरान अल मजीद, और कसम है कुरान मजीद की। कसम से मुराद एक तो ये होता है कि किसी चीज की अहमियत बयान करना होती है, और कभी कसम से मुराद ये होती है किसी चीज को गवाह बनाना होता है, जैसे वल असर, जमाना गवाह है, जमाना गवाही देता है इस चीज पे, गवाह जमाना गवाह है कि हर इंसान खसारे में है। यहाँ पे कुरान मजीद की कसम उठाई जा रही है अजमत के तौर पे, ये कुरान को मजीद कहा गया, कुरान मजीद, मजीद से वही मजद और अजमत और हैसियत जो है वो मुराद है। कसम का नतीजा क्या है, जैसे कहा कि वल असर, जमाना गवाह है, नतीजा उसका ये है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में। यहाँ पे जो नतीजा है वो बयान नहीं किया गया, लेकिन सूरा के मौजू के हवाले से समझ में आता है कि कुरान मजीद की कसम उठा के अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहता है कि कयामत का होना हर हाल में जरूरी है, ये लाजमन होगी। हम कसम उठाते हैं कुरान मजीद की कि कयामत होगी, ये आखिरत का दिन जो है वो होने वाला है। अच्छा, अब उनका जो है जो काफरीन की तरफ से ताज्जुब था चीज़ों पे, पहले तो उसको बयान किया जा रहा है 2 आयतों में। बल आजिबू, इनको ताज्जुब ये है कि अंजाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, उन्हीं की जिन्स में से इंसानों में से एक इंसान आया है, और सबसे पहले तो वो कहता है कि जी मेरे पास वही आई है। ये कहते हैं कि जी हमारे जैसे इंसान पे वही कैसे हो सकती है, इंसान पे वही कैसे हो सकती है, एक ताज्जुब ये है। खुद उसका जो दावा है कि मैं नबी हूं और मेरे ऊपर वही हुए, वही ताज्जुब खैज है, लेकिन उसने एक और ताज्जुब खैज बात कर दी कि इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी है, मरने के बाद इंसान जिंदा होगा। तो इनको ताज्जुब यह हुआ कि उन्हीं में से एक इंसानों में से एक इंसान आया और उसने इनको कहा कि तुम इस जिंदगी के बाद मरने के बाद फिर जिंदा किए जाओगे। वकाला, उन्होंने कहा, अल काफिरून, काफिरून है आधा शेयन अजीब, तो बड़ी ताज्जुब खेज बात है, हमारे जैसा इंसान नबी बन गया और खबर ये देता है कि मरने के बाद फिर जिंदा होंगे, हमने तो कभी नहीं देखा है कोई मरने के बाद जिंदा हुआ है, तो ताज्जुब, इस पे ताज्जुब का इजहार किया और इसको फिर तफसील दी है। अइज़ा मितना, क्या जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन, और हम मट्टी बन जाएंगे, जर्रा जर्रा इंसान के जिस्म का मट्टी बन गया, फिर हम जिंदा किए जाएंगे, ज़ालिका रजउम बईद, ये वापसी और दोबारा जिंदा होना तो हमारी समझ से बहुत दूर है, हमारी समझ में नहीं आता कि कैसे होगा। अब आप देखेंगे कि जो भी इनकार किया जा रहा है, चाहे वो बुनियादी अकायद में से तौहीद का इनकार हो, चाहे रिसालत का इनकार हो, चाहे कयामत का इनकार हो, इनके पास दलील नहीं है न होने की, बस सिर्फ जो है थोड़े से जिसको कहते हैं कि शुकों को शुभात है, उन शुकों को शुभात की बुनियाद पे वो अपना अकीदा बनाए हुए हैं। इसलिए कुरान मजीद कहता है कि इनके सारे अकायद जो हैं वो जन की बुनियाद, गुमान की बुनियाद पे, यकीन की बुनियाद पे नहीं है। जबकि इंसान को चाहिए कि यकीन पे चले, जिंदगी का अमल जो है वो यकीन की बुनियाद पे रखे, न कि गुमान की बुनियाद पे। गुमान की बुनियाद पे इंसान अपना कोई अकीदा नहीं बना सकता। इनके पास चंद गुमाने हैं उसी की बुनियाद पे, जैसे ये कह रहे हैं कि जी कैसे होगा, तो ये उनको जो ताज्जुब है तो ताज्जुब की बुनियाद पे जो है वो कह रहे हैं। अब इनका जवाब दिया जा रहा है। सबसे पहला जवाब ये दिया जा रहा है कि जो भी इंसान का अगर जिस्म का जर्रा भी होगा तो हर जर्रा अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के इल्म से कोई चीज बाहर नहीं है, हर जर्रा कायनात का वो अल्लाह के इल्म है। قد علمنا ما تنقص الارض منهم, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ये मरते हैं इंसान और इंसान के जिस्म जो है मट्टी बनता है, तो हमें पता है कि मट्टी किस चीज को खाती है, किस चीज को कम करती है, हम अच्छी तरह से उसको जो है वो जानते हैं। और न सिर्फ हम जानते हैं, वहां इंदना किताबन हफीज, हमारे पास जो है लोहे महफूज किताब है जिसमें हर चीज महफूज, जर्रा जर्रा महफूज, उससे कोई चीज जो है बाहर नहीं है, हर चीज उसके अंदर जो है वो महफूज है। अब पता नहीं कितनी बड़ी कायनात है, उसका हर जर्रा जो है वो महफूज कैसे है, चूंकि उस दुनिया को हम नहीं जानते इसलिए हम नहीं कह सकते। कुरान मजीद में कहा गया है कि इंसान जब कयामत के दिन उठाया जाएगा, उसका नामा आमाल उसके हाथ में दिया जाएगा, जैसे ही उसको नामा आमाल मिलेगा फौरन कहेगा मा लिहाजा, ये अजीब नामा आमाल है कि इसमें से मेरे अमल की न कोई छोटी चीज रही हुई है न कोई बड़ी चीज। अब कैसे नामा आमाल क्या है, वो मिलते ही उसको मालूम हो गया कि पूरी जिंदगी उसकी जो है उसका न छोटा कोई अमल इसमें गायब है ना बड़ा अमल, कैसे मालूम हो गया पता नहीं, क्योंकि इस दुनिया में तो किताब है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, और इंसान की अगर पूरी जिंदगी किताब है तो वो तो कई जिल्दों में होगा, उसको पढ़ने के लिए तो वक्त चाहिए। लेकिन जैसे ही उसको मिलता है कयामत के दिन नामे आमाल, फौरन वो उसका पूरे का आलिम हो जाता है, कहता है कि मा लिहाजा ला युगादिरु कभी रतन वाला सवीरा, ना इसमें छोटी चीज रही हुई है मेरी ना बड़ी चीज रही, वो दुनिया कुछ और है इसलिए हम नहीं जानते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हमारे पास लोहे महफूज है, किताब है जिसमें हर चीज महफूज है, कोई चीज उससे जो है बाहर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये काफिरीन जो है वो इस बुनियाद पे इनकार कर रहे हैं कैसे ये जर्रात जो है इंसान के जिस्म के जमा होंगे, ये समझते हैं कि अल्लाह के इल्म में नहीं है, नहीं अल्लाह के इल्म में है ये समझते हैं। फिर इनकार क्यों करते हैं, इनकार इसलिए कर कहते हैं बल कद्दबू बिल हक, उन्होंने हक का इनकार किया है, किस वजह से, इसलिए कि उन्होंने अपने अंदर एक आदत पैदा कर दी है कि जब भी हक देखते हैं उसका इनकार करते हैं, हक से दुश्मनी। तो चूंकि उनके अंदर हक से दुश्मनी एक आदत बन गई है, ये आखिरत भी हक था उनके पास आया और आते ही उन्होंने इनकार कर दिया इसका। बल्कि कज़्ज़बू बिलहक लम्मा जाअहुम, जैसे उनके पास आया कहा कि नहीं हो सकता, जबकि इस पे गौर करते, इसको समझते, इसकी दलीलों को देखते, इसके मुतजाद दलीलें देखते, फिर कोई नतीजा नहीं, जैसे ही उनके पास आया फौरन उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि असल में ऐसा नहीं है कि ये काफरीन जो है खुदा के इल्म के मुनकर हैं, ये खुदा के इल्म के मुनकर नहीं हैं, ये बुनियादी तौर पे हक से दुश्मनी है उनके अंदर, कि जैसे ही उनके पास हक आता है वो इनकार कर देते हैं।